ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 7 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 6. भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. शब्दात् एतत् योनीनि, एतत् अर्थात ये दोनों शक्तियां, योनिनी जिनके जन्म के स्रोत योनिया, भूतानी प्रत्येक सृष्टि या पदार्थ, सर्वाणी सारे, इति इस प्रकार, उपधारय जानो, अहम कृत्स्नस्य जगतः, अहम यानी मैं कृत्स्नस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रभवः उत्पत्ति का कारण, प्रलयः प्रलय या संहार तथा और. अनुवाद, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है. इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जितनी वस्तुएं विद्यमान है अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है. आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है. भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है. इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है. एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है. उसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विश्व की उपस्थिति के कारण होता है. अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है. अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है. भगवान का अंश रूप जीव आत्मा भले ही किसी गगनचुंबी इमारत या प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण कभी नहीं हो सकता. इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है. अतः वे समस्त कारणों के कारण है इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको भवनां यो विदधाति कामनां। नित्यो नित्यानां अर्थात वो समस्त नित्यों में, यानी जो नित्य हैं, इटर्नल वस्तुएं हैं, उनमें सब में ग्रेट नित्य, ग्रेट इटर्नल वस्तु वो ही है। और चेतनश्चेतनानां अर्थात समस्त जीवों की परम जीव है, जितने भी चेतना वाले जीव हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम चेतना उनकी है। और एको बहुनाम यो विद्धाति कामनाम, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं, और मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और कृष्ण कहते हैं कि समस्त बुद्धि का मूल में हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, तब तक वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। एको भवनाम यो विद्धाति कामनाम, वास्तव में केवल उन्हीं को समझने के लिए ही जीव को ये बुद्धि मिली है, ताकि वो भगवान को, भगवान की इन असीम शक्तियों को समझ सके। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता माता की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, यानी इस अध्याय में भगवान अपने विषय में बताएंगे। वास्तव में भक्तों, हर कोई कुछ न कुछ बताता है किसी और व्यक्ति के विषय में। अगर हमें किसी के विषय में कुछ सीखना है या कुछ जानना है तो वास्तव में उस स्वयं उस व्यक्ति के अतिरिक्त और कभी कोई भी उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। जैसे आप अगर किसी को जानते हो तो उसके विषय में आपको जितना पता होगा आप उतना बता सकोगे, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने विषय में बताएगा तो क्योंकि उसको तो अपने विषय में पूरा का पूरा ज्ञान है ना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे क्या क्या पावर्स हैं, मेरे क्या क्या कार्य किए, वो अगर बताएगा तो अपने बारे में जो नॉलेज बताएगा या जो ज्ञान देगा वो एकदम परफेक्ट होगा। इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता का यह सातवां अध्याय उसमें भगवान श्री कृष्ण शुरू वाले श्लोक में कहते हैं मैया सप्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयाम समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छो। अब तो मेरे से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम किस तरह से बगैर किसी संशय के मुझे समझ सकते हो और मेरा आश्रय ले सकते हो और अपने अपने को मेरे साथ योग धारण करके किस प्रकार अपने मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो। और फिर इतना कहने के बाद भगवान ने कह दिया ज्ञानम ते हम सवि ज्ञानम इदम वक्षाम यते हिता। ये जो मैं इदम वक्षाम शेषतः, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ वो सब जानने के बाद आप को कुछ और यज ज्ञातवा नेह भूयोन यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। पूरा का पूरा मैं तुम्हें बता दूंगा और उसके बाद आपके लिए इस संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। और फिर इतना बताने के बाद भगवान ने एक अत्यंत ही सुंदर बात बताई, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्त्वतः। सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में ज्यादातर तो लोग आहार निद्रा भय मैथुन अर्थात भौतिक इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त आगे उनकी मति जाती नहीं है। बहुत ही दुर्लभ वो व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं और उन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले में परिपूर्णता क्या है मुझे समझना, और वो तो कश्चिन माम वेति तत्वता, मुझे तो कोई एक ही करोड़ों में से जान सकता है। और आगे भगवान अपने विषय में बोलना शुरू किया श्लोक नंबर 4 से। भगवान अपनी दो शक्तियों के विषय में बता चुके हैं। श्लोक नंबर 4 में भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृत रष्टदा, कि मेरी 8 प्रकार की सेपरेट शक्तियां हैं जिनमें क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 हैं, उनमें से 5 क्या है स्थूल है, कौन सी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूल है, और 5 सूक्ष्म है, कौन सी मन बुद्धि और अहंकार। टोटल 8 शक्तियां भगवान ने श्लोक नंबर 4 में बताई और श्लोक नंबर 5 में इनको और भी क्लियर किया। भगवान ने कहा अपरेयम इतस्त्वन्यम, ये तो अपरा शक्ति है और अन्य भी एक शक्ति है प्रकृतिम विद्धि में परम, वो तुम परा जानो, वो ऐसी शक्तियां हैं वो पराशक्तियां हैं। और वो उसमें क्या आता है जीव भूता महाबाहो यदिदम धारयते जगत, उसमें जीव आ जाते हैं जो इस संसार को जितने भी संसार में वस्तुएं हैं उनको यूज करते हैं, उनका विदोहन करते हैं। और आज भगवान कहते हैं एतद् योनिनि भूतानि, एतद् मतलब ये दोनों शक्तियां, ये दोनों कौन सी, जो श्लोक नंबर 4 और 5 में बताएं, कौन सी, अपरेयम और परेयम, यानी अपरा शक्ति जिसमें 8 तत्व भगवान ने बताए और परा शक्ति जिसके अंदर जीव आत्मा है। तो इन दोनों एतद् योनिनि अर्थात इन दोनों, एतद् मतलब ये दोनों शक्तियां, योनिनि अर्थात जिनके जन्म के स्रोत यानी योनिया भूतानि। अब इस यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी योनिया संसार में हैं, वो सब इन दो शक्तियों के मिलाप के कारण है। समझ में आ रही बात कि अब जितना भी इस संसार में जितने भी जीव दिख रहे हैं आपको, तो वो भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति को मिलाकर उनके संयोग से ये दोनों जितने भी जीव हैं वो उत्पन्न होते। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारया, सर्वाणि मतलब सारी, इति उपधारया, इस तरह जानो कि इस संसार में जितने भी जीवों की योनियां हैं वो इन दोनों प्रकृतियों के मिलाप के कारण संभव हुई है। और आगे भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे, वास्तव में ये वो हकीकत है जिसको जानने के बाद एक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य पता चलता है। भगवान कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्नस्य का मतलब होता है संपूर्ण, जो कुछ भी इस संसार में है, इस जगत के अंदर जो कुछ भी है, उस संपूर्ण का करने वाला मैं हूँ। क्या होता है संसार में, प्रभव प्रलय तथा, प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण। इस संसार में सबसे पहले तो जन्म होता है संसार में जीवों का, उसके बाद संहार होता है, तथा मतलब इसके अतिरिक्त जो जब तक जीव बीच में जी रहा है उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। जीने के लिए सांस लेना, पानी और जो भी भौतिक वस्तुएं, अनाज इत्यादि, जिस वस्तु की जीव को आवश्यकता होती है उसको, उसके लिए तथा लिखा है। यानी भगवान कहते अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, इस संसार में चाहे जीवों की सृष्टि करनी हो, उनका प्रलय करना हो या पालन करना हो, उस सब का कारण मैं हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। यानी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस संसार में जो कुछ भी है उसको बनाने वाला, उसको पालने वाला, उसको संहार करने वाला और उसको संसार में सहारा देने वाला अगर कोई है तो वो केवल कृष्ण है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव ये दावा करते हैं कि कोई भी वस्तु को लेकर कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मैंने बनाई है। तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर वस्तु उसने कोई चीज बनाई हो, जैसे अगर कोई कारपेंटर बोलता है कि ये फर्नीचर मैंने बनाया है और वो जब बना के समझो अगर कोई सेठ उसको पैसे देता है और बोलता है कि भाई तुम ऐसा करो ये फर्नीचर मेरे लिए बनाओ, और वो बनाता है और वो कहता है ये मैंने बनाया है तो ये मेरा है, तो सेठ क्या करेगा, उसको 2 थप्पड़ मारेगा। अगर वो फर्नीचर बना के घर लेकर जा रहा है, बोले ये तो मैंने बनाया अब ये मेरा हुआ, तो सेठ बोलेगा इसके लिए धन मैंने दिया तुमको, है ना, धन तो मैंने दिया। तो वास्तव में वो धन कमाया उसने कहाँ से है, अपने शरीर और बुद्धि को यूज करके, है ना, शरीर और बुद्धि। तो भगवान ने कहा शरीर किससे बनता है, 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके साथ कौन है, मन बुद्धि अहंकार, यानी ये दोनों भगवान की शक्तियों को यूज करके उसने धन अर्जित किया और धन से उसने कोई वस्तु बनाई, चाहे कुछ भी बनाया हो, ठीक है। तो ये वास्तव में हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का बना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है कि कोई भले ही कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ले या कोई बहुत बड़ा कारखाना बना ले या किसी बहुत बड़े सिटी का निर्माण करे, लेकिन इस विराट ब्रह्मांड का कारण भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। यानी कोई ये तो बता सकता है भाई ये सिटी मैंने बनाया है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये गांव हमने बनाया है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड है उसका एक पीस है, उसके अंदर अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड आपका हो गया। कोई भी संसार में वस्तु है वो टिकी हुई है भगवान के होने पर, है ना। यहाँ तक कि कोई साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सदैव क्या बोलते हैं, हमने ये इन्वेंट किया, हमने ये इन्वेंट किया, हमने ये इन्वेंट किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की इन वस्तुओं को यूज करे बगैर, भगवान ने जो अभी यहाँ पर अपनी दो शक्तियां बताई हैं, अपरा शक्ति और पराशक्ति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तथा जीव आत्मा, इन वस्तुओं को यूज करे बगैर साइंसदान एक ग्रीन पत्ता भी नहीं बना सकते। भले अगर कोई वो बोलते हैं ना कि भाई मैं हमने ये किया, हमने ये किया, एक ग्रीन पत्ता जो कि उगता है, मतलब एक इतना भी लीफ भी बना नहीं सकते हैं हम भगवान की इन शक्तियों को यूज करे बगैर। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस संसार में कुछ हमारा, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम बुद्धिमानी वाली बात है जो कि हम हमेशा कहते रहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा देश है, ये मेरे माता पिता हैं, मेरा 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 कहते हुए थकते नहीं हैं, परंतु एक समय आता है कि वो सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कृष्ण कहते हैं आप भले ही कहते रहो कि मेरा है मेरा है मेरा है, परंतु जी नहीं, ये सब मेरा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। वास्तव में जो कुछ भी है उसका पालने वाला, उसका बनाने वाला और उसका संहार करने वाला मैं हूँ। जो चाहे इस संसार में जो भी आध्यात्मिक है या भौतिक है वो मेरे कारण है। और एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपसे सब कुछ ले जाऊंगा। कालोस्मि लोकक्षय, ये जो संसार में कुछ भी होता है उसको एक समय आने पर मैं आप सबसे ले लूंगा, जो कुछ भी आपका है। अगर आप ये दावा करते हो कि ये आपका है तो आप मुझे ये सब वापस लेने से रोक के दिखाओ। भगवान चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप समझते हो या आप इस बात को क्लेम करते हो कि ये मेरा है, कोई भी संसार की एक सुई भी, छोटी से छोटी वस्तु भी अगर आप बोलते हो मेरी है, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपसे सब कुछ ले लूंगा। हम देखते हैं संसार में कितने बड़े बड़े दानी, कितने बड़े बड़े दौलतमंद लोग और बहुत ज्यादा फेमस लोग, हर एक किसी कोई ना कोई चीज को क्लेम करता है, ये मेरा है मेरा है मेरा, वो सब चले जाते हैं, वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इस वस्तु के मालिक नहीं है। यदि वो उनकी है तो उनको छोड़नी नहीं पड़ती ना, उनको तो फिर वो उसको अपने साथ लेकर जाना पड़ता, लेकिन इस संसार में जो कुछ भी है हमें छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर ये वस्तु हमसे छीन ली जाती है, इसका मतलब है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई वस्तु हमारी है तो फिर हम उसको अपने पास हमेशा के लिए रख सकते, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस संसार में जो कुछ भी है उसका भोक्ता मैं हूँ। तुम इवन भौतिक वस्तुओं की तो बात दूर की है, घर प्रॉपर्टी गाड़ी बंगलो ये सब तो अलग है, हमारा अपना शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि यदि हमारा होता तो हम इसको छोड़ के कैसे जाते, इसको भी अपने साथ लेकर जाते, परंतु इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेमन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं इस संसार की वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना चाहते हैं। वो सदैव क्या सोचते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है उससे मुझे आनंदित होना है। भगवान को अपने जब तक जीव ये नहीं सोचता कि ये भगवान का है और मैं इसके द्वारा भगवान को संतुष्ट करूं, तब तक उसे दुख भोगना पड़ता है इस संसार में। एक दफा जैसे हम बहुत ही सब जानते हैं हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यप के भाई थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर बल था, बहुत बहुत बल। अब भगवान कहते हैं बलम बलवताम साहम, बल देने वाला जिसके पास बल है वो सब बल मैंने दिया उसको, लेकिन हमारी कोई वस्तु आ जाती है ना भगवान। अब देखो भगवान को षडैश्वर्य पूर्ण कहा जाता है, यानी भगवान के अंदर छह प्रकार के ऐश्वर्य जो है वो परिपूर्ण मात्रा में है। जैसे सुंदरता ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। भगवान के विषय में पराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने बताया है कि भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में होता है। जैसे सुंदरता, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सुंदरता है, परंतु वो सुंदरता कैसी है, जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल के किसी को दे दी गई हो। यानी वो लोग सुंदर होते हैं उस समय भी जब वो बिल्कुल परिपूर्ण मात्रा में सुंदर होते हैं, उस समय भी वो सबको सुंदर नहीं लगते है ना। किसी एक व्यक्ति को या दो कुछ समाज को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई और सुंदर होता है जो दूसरे लोग को और कोई सुंदर लगता है ना, ऐसा समझ में आता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य को चलो ठीक है वो सुंदर लग रहा है, लेकिन वही सुंदर जीव जो है वो दूसरी योनियों को जैसे कॉकरोच है खटमल है उनके लिए इस सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है ना। वो तो उनको कोई कॉकरोच होगा उसको तो लेडी कॉकरोच ही ज्यादा सुंदर लग रही होगी उस सुंदर स्त्री से ज्यादा है ना। तो ऐसा कहने का अर्थ क्या है कि एक तो हमारी सुंदरता जो है वो लिमिटेड है, सबको आकर्षित नहीं करती, और उससे भी अधिक बात क्या है कि वो हमारे पास लिमिट समय के लिए है। एक समय ऐसा आएगा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल उसके बाद हमारी सुंदरता की ओर कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा, और फिर हम है ना जैसे बोला जाएगा कि ये बूढ़े लोग में कोई सुंदरता नहीं होती है, बूढ़े लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो वस्तु जो आपके आपके पास हमेशा रहे वो आपकी होती है, लेकिन समय के लिए कुछ समय के लिए आपको भगवान दे देते हैं नाम यश। अभी देखो यहाँ पर फेम को अगर हम देखें तो क्या होता है कि कोई कोई लोगों को एक खास टाइम पीरियड के लिए फेम मिलता है, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत बहुत हीरोज होते हैं बड़े बड़े या हीरोइंस होती हैं, इस तरह से एक टाइम पीरियड के लिए उनको फेम मिलता है। सब लोग जान रहे होते हैं कि ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतने सारे मैच खेले, इतने सारे रन बनाए, लेकिन उसका फेम कितना होता है एक पर्टिकुलर जगह के लिए। जैसे एक जगह पर क्रिकेट खेला जा रहा है तो फिर उनको तो पता होगा, लेकिन उसी क्रिकेटर को अगर हम ना कोई ऐसी जगह हो जैसे जंगल में जो प्राणी है वो क्रिकेट कभी खेलते नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो उनको जाके बोलेंगे भाई ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, तो उसके लिए कोई आकर्षण वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में चाहे वो भगवान के नाम को जान रहे हो या ना जान रहे हो, लेकिन ये भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है हर जीव कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है, जो वर्षा देता है, जो सूर्य को और चंद्रमा को अपने समय समय पर भेजता है। यानी कि भगवान का फेम जो है वो हर जगह पर है, भगवान को हर कोई जानता है कि कोई ना कोई भगवान है। अब वो तो जाहिर सी बात है इतना जानने के बाद जब वो इस बात की गहराई में जाते हैं, डीप जाते जाते हैं, शास्त्र को अध्ययन करते हैं और गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उन्हें पता चल ही जाता है कि भगवान कौन है। लेकिन ये तो कोई भी स्वीकार करता है कि भगवान है, और आज भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका पालने वाला, उसका उत्पन्न करने वाला, उसका संहार करने वाला संपूर्ण मैं हूँ। ऐसा खाली भगवान नहीं कहते, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। वास्तव में अगर कोई परम ईश्वर है तो वो कृष्ण है, उनका कोई आदि नहीं, वो समस्त कारणों के कारण है। जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है उसका आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण को ये सारा कार्य करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना। वास्तव में भगवान की परिभाषा बताते हैं कि भगवान वो है जो केवल संकल्प मात्र में मात्र से अपनी शक्तियों के द्वारा वो कार्य कर सके। भगवान को ये सारा संसार की उत्पत्ति करना, संहार करना, उसको पालना, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि भगवान सुबह से लेकर रात तक, जैसे हम, हमारा एक छोटा सा परिवार होता है, दो बच्चे होते हैं, मियां बीवी होते हैं, लेकिन जो कमाने वाला सदस्य होता है वो सुबह से लेकर रात तक थका हुआ आता है, और तब कहीं जाके महीने के बाद उसको सैलरी मिलती है और फिर वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की विशेष को पूरे करता है। लेकिन भगवान के लिए क्या है, भगवान आराम से अपने गालोक वृंदावन धाम में बांसुरी बजा रहे हैं, और सारे प्लैनेट्स में, सारे ब्रह्मांडों में जितने भी लोग हैं वहां पर सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान सोचे कि भाई आज इसको खाना अभी तक नहीं दिया है मैंने, इसको इसके लिए भी खाना मुझे अरेंज करना है, अभी वो एक ना समुद्र के अंदर मछलियां हैं उनको जाके देना है, या फिर कोई जंगल में कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं उनको जाके देना। भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते मया दक्षिण प्रकृति सुयते से चराचर, मेरी आंख के इशारे से प्रकृति कार्य करती है। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, और ये शक्ति जो है वो भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हुए उनकी इच्छा मात्र को स्वीकार करके भगवान की इच्छा को पूरा करती है। और लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं अपने अभी अपने भक्तों के साथ, अभी तो भगवान ने कहा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं उनको जन्म लेता हूँ, इस जगत को जन्म देता हूँ, कृष्णस्य जगतः प्रभवः, उनको जन्म देता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, प्रलय और प्रलय कर देता हूँ। लेकिन बीच बीच में उन समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, और जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो इतने अद्भुत कार्य करते हैं, बहुत बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। कभी 7 साल के भगवान छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, पूतना को मार देते हैं, कभी अगासुर का वध करते हैं, कभी बकासुर का, और कभी कंस इत्यादि का, बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध करवाते हैं। तो फिर भगवान के ऐसे कार्यों को देखकर, इतने बड़े छोटे से भगवान इतनी बड़ी पूतना को मारते, तो ऐसे कार्यों को देखकर मूर्ख क्या कहते हैं, ऐसा थोड़े हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा कभी ऐसा कोई कार्य कर सकता है, ये सब कल्पना है। तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर, मैं मनुष्य तन में जब संसार में आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे इस परम दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो इस संसार में जो कुछ भी है, भले ही हमारी बुद्धि उसको समझ ना पाए, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं अहम कृष्ण से जगत, वो सब मेरे से आया है, उसका बनाने वाला कौन है। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम चलो कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये तो जानना ही है ना, कुछ कोई ना कोई तो है, कुछ भी संसार में है, किसी न किसी के द्वारा आया है, किसी न ये संसार बनाया है, कोई ना कोई तो इस संसार का प्रलय कर रहा है, और वो कौन है, ये मनुष्य जीवन उसी को जानने के लिए मिला है। इसलिए वेद कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि यस्यः, कि इस संसार में जो जन्म हो रहा है, जो सब कुछ पालन हो रहा है और जिसका क्षय हो रहा है, उसको जानना ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको जानने के लिए ही तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, या मनुष्य जन्म इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस जिज्ञासा की प्राप्त करने के लिए, कि आखिर वो है कौन जिसने मुझे इस संसार में भेजा है और जो कुछ समय के बाद मुझे फिर यहाँ इस संसार से लेकर किसी और जगह पर भेज देगा, तो उसके विषय में जानना ही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। और भगवान ने पहले ही बता दिया श्लोक नंबर 3 में कि मनुष्याणाम कश्चित जगति सिद्ध है, कि मनुष्याणाम सहस्रेशु, कोई सैकड़ों में से हजारों में से कोई एक इस वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन यदादाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम इति तत्वतः। हम देखते हैं संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो ये सोचते हैं कि शायद ये देवता इस संसार का भगवान है, ये देवी इस संसार का भगवान है, या कोई एक मनुष्य इस संसार का भगवान। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, और फिर वो अलग अलग देवी देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्तों, अगर हम शास्त्र की बात मानेंगे, क्योंकि हम भगवान के विषय में अपनी बुद्धि से अनुमान नहीं लगा सकते, अपनी इंद्रियों से प्रमाण नहीं दे सकते, भगवान को जानने का केवल एक ही प्रमाण है, क्या? शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और समस्त शास्त्र यही बताते हैं, जितने भी शास्त्र हैं उनका यही एकमात्र राय है कि वास्तविक भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम द ग्रेट्स, जितने भी ग्रेट जीव हैं, देवी देवता हैं, जो भी हैं, वो सब भगवान के सेवक हैं। यही बात को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। संसार में अगर कोई ईश्वर है तो वो केवल कृष्ण है और बाकी सब उनके सेवक हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में अत्यंत सुंदर बताया कि जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है वे सब इन दो पदार्थ और आत्मा के प्रतिफल है। जैसे भगवान ने बताया कि मेरी दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति क्या है? जीव आत्मा। और अपरा प्रकृति क्या है? इस संसार के पदार्थ। जैसे तो फिर इस संसार में जो कुछ भी वजूद में है, दिख रहा है, विद्यमान है, वो इन दो प्रकृतियों का सम्मिलन है। और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही खास बात इस श्लोक में बताई कि आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब जो कुछ भी संसार में है वो आत्मा जब इस शरीर के अंदर डाल दी जाती है तो फिर सारी चीजें उत्पन्न होती है। मतलब कोई मुर्दा जिसके अंदर आत्मा नहीं, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। आत्मा के द्वारा जब आत्मा इस पदार्थ के अंदर डाली जाती है तो उस संसार का सब कुछ उत्पन्न होता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। अब कुछ भी हो जाए, कोई भी जीव, भले ही इन आत्मा जब किसी शरीर के अंदर होती है तो बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करता है, लेकिन कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आत्मा को उत्पन्न कर सके। भगवान कहते न जायते, वो कभी जन्म लेती नहीं है। जब आत्मा जो है वो इटर्नल है, जब भगवान जब से है तब से आत्मा है, कोई भी ऐसा समय नहीं था। भगवान कहते हैं न त्वेवाहम न तु जातम न त्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या समस्त राजा नहीं थे। यानी कि कोई भी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे जीव कितना ही ज्यादा विकास कर ले परंतु कभी भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं करेगा, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। जो कुछ भी है वो केवल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है इस तात्पर्य में कि इस भौतिक शरीर का विकास कैसे संभव होता है। इसीलिए संभव होता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। जैसे एक आत्मा जो है, एक बच्चा जब पैदा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और इसके अंदर आत्मा है तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो कुमार अवस्था में आता है, फिर यौवन अवस्था में आता है। क्यों हो रहा है विकास? क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की शक्ति, जो पराशक्ति आत्मा, उसके अंदर है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान इसके अंदर उपस्थित है। भगवान के कारण इस विराट जगत की का विकास हो रहा है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। जो कुछ भी है वो इसीलिए है क्योंकि भगवान की सत्ता उसके अंदर है। जो कुछ इस संसार में दिख रहा है दो शक्तियां हैं, एक तो पदार्थ है और दूसरा आत्मा है। पदार्थ क्या है? जो भगवान की अपराशक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और एक पराशक्ति है जीव आत्मा। जब इन दोनों का सम्मिलन हो जाता है तो इस विराट जगत में जो कुछ भी है उसका होना संभव होता है। सब कुछ भगवान की कृपा से, भगवान की आधार पर टिका हुआ है। तो यहाँ तक भगवान की शक्तियों के विषय में हमने पढ़ा। आगे भगवान अत्यंत ही सुंदर रीति से किस प्रकार से वो इस संसार में रचे बसे हैं और किस प्रकार से इस संसार में विभिन्न कार्यकलाप भगवान करते हैं, उनके विषय में भगवान अपने मुखारविंद से बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।